सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुडाणी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चो, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिला जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर यो साथ कितने दिन का है यो तक भी ध्यान देते नहीं। किसके ध्यान ना देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला, मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि यूं ना कह, मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्री मद भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं, अपने इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हैं महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोकवेद दंत कथाएं सुना करते थे उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखा कर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी। जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ कर आ गया, लेकिन भविष्य जीरो हो गया उसका, सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाता है। गरीब ये जीवन सत सफल है जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा का भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना, ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं, वो नॉर्मल हो जा, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो, ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अजब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में तो गए कुछ नहीं, हाथ लगा रहे कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं, तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर लोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बूझे, चंदन वन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी नासी जाए। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, ज्यों का त्यों चिंगारी निकलेंगे। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ के रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी हैं। उस परम पिता के घर जाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया, शरीर फांसी प्रवेश और जय के ऊपर इतनी नौबत बीती, कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को सतलोक की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल में, ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे, तो आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरिय सोई। ਗਰੀਬ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਿਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕੇ ਕਾਜ ਹਿਰਨਾ ਕੁਛ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਉ ਤਿੱਤਰ ਕੋ ਬਾਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਰਿਆ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਉਰਫ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਥਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕੀ ਭਗਤੀ ਮਾਸਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਯੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਨ ਕਰ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਤੇ ਰਹੋ, ਉਸੇ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਛੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੇ ਮਾਲਿਕ ਉਨਕੀ ਮਦਦ ਸਵਯਂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਾਮਾ ਕਾ ਦੇਵਲ ਫੇਰਿਆ ਮੁਈ ਜਵਾਈ ਗਾਏ ਪੀੜਾ ਮਿੱਟੀ ਸੰਤ ਕੀ ਛਾਨ ਛਵਾਈ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤਾ ਕਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਮੀਨ ਨੌਕਰ ਗੁਲਾਮ, ਔਰ ਗੈਲ ਗੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਗਤਿਕ ਧਰਤੀ ਆਪਾ। ਅਬ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਥੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹੀਂ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵਹਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਖੇਤਰ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਤੇ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਕੋ ਸੁਣਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਸੁਣਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੱਚੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਕੌਵੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਤੇ। ਤੋ ਉਸਨੇ ਰੰਕਾ ਔਰ ਬੰਕਾ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਥੇ, ਇੱਕ ਉਨਕੀ ਬੇਟੀ ਥੀ ਵੰਕਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਥੇ, ਜਬ ਉਹ ਵਾਸਨਪੁਰ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਹਮ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਹਮ ਬਾਧ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। ਅਬ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਸਕੇ ਐਸੀ ਧੁੰਮ ਚੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਬਜਾਤੇ ਹੈ ਤਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘੰਟੀ ਬਜਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਜਾਤਾ ਬਜਾਤਾ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਕਰੂੰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪੱਥਰ ਕੀ ਮੂਰਤੀ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਹਾ ਪੰਡਿਤੋਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸਕੋ ਮੰਦਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੇਂਕ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਦਰ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਕਾ ਸਮੇਂ ਦੂਸੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਮਾਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਹਮਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਇਸਨੇ ਰੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜਾ ਪੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਲੋ ਲਗੀ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਕਾ ਮੂੰਹ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਖੜੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਸ਼ਚਰਯ ਚੱਕੀ ਪਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮਦੇਵ ਰੰਕਾ ਬੰਕਾ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਤੋ ਉਸ ਦਿਨ ਵੰਕਾ ਲੜਕੀ ਰੰਕਾ ਔਰ ਬੰਕਾ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਕੇਲੀ ਥੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਥੀ ਜੈਸੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਹਲਦੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਬੋਲਾ, ਬਹਿਣ ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕੋ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੋ। ਵੰਕਾ ਬੋਲੀ ਰੇ ਨਾਮਦੇਵ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਵਾਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਵਿਖ ਮੰਦਰ ਮੈਂ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਲਾਊਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਫੇਰ ਗਏ ਥੇ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕਿਆ ਪੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਗਿਆ, ਦੇਖਾ ਤੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਵੰਤਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦੀ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਹਮ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਡਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਯੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤੇ ਆਪ। ਅਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਤੀ ਪੀਕ ਟਾਈਮ, ਅਬ ਯੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਲੋ ਕੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਤਬ ਕੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਪੈਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਪਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो श्री मालिक ने, तो आंखें खोल लो। गिरिनामा का देवल फेरिया, मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। अब जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते, करा करा वसाइया, मन में डर उठा, दादू शद्र जीव के आप बगल हो गए, उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई, उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर, जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरी गर्दन ही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए अपने बच्चे के लिए और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में सब छान झोंपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नई डालते थे या कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा बेटा अपनी छान ठीक कर ले झोंपड़ी, बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सरकंडे काट के लाता हूं घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनकर फिर वहां सेवा में लग गया, शाम होगी वापस आ गया। उसकी माँ बोली बेटा ले निकल घास फूस, माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही, उसकी माँ बोली भाई देख ले तो बारिश हो जाएगी, कुछ दिन सारे कपड़े भीजेंगे अपने, भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन उसने सोचा आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा, सत्संग तो फिर पूरा सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुवाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी, पैर के पट्टी बांध दिया, अपना कपड़ा वही ले रखा तो पाड़ के चंदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के लाए, आकर छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा, माँ बोली के लागे बेटा, उन्होंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई बेटे को, तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे का, माँ माफ करिए आज भी नहीं सामान लड़ पाया मैं तो, वो ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ, कोशिश करो था जल्दी जल्दी काटू, माँ दुख पाओगी, मेरे तो पैर में कुहाड़ी लग गई है, दांती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता, माँ ठीक होती बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देखे और कह बेटा क्या बोल रहा है तू, तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया, बेटा क्या कह रहे हो, ये चोट कब लगी तेरे। नामदेव निकट आया, देखा ताकि झोपड़ी बना रखी है गजब के सरकंडे ला के, ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया, खूब रोया बैठ, माँ भगवान थे परमात्मा थे वो तो बच्चो, जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल आ गया जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी, जैसे इस युग में, और इस युग के फिसले हुए भक्ति गजब की रहती है क्योंकि यह साधना शास्त्र में होता है। मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनके साथ ठहरे, इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बना, मोक्ष तो ना हो। तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है। तो या तो इस भक्ति ने छोड़ दो, रिया कति दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, अब के पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा, से दिल डट गया आपका, दृढ़ रहे तो कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर धीरे धीरे रे मना धीरे सब पूछो, माली सी चैसो बड़ा करे तो आए पलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसके, महीने 20 दिन भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो फिर देखना, आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइयो। इसी प्रकार इस भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी उनकी क्या स्थिति थी मेरे भक्तों की, वो डटे रहे टिके रहे, आज हर तरह से उभारा है, संसार से न्यारा है और मोक्ष मिलेगा जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कर वोई जान के धन्ना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त भगत थे, बहुत जबरदस्त लगन लगी हुई थी उनकी, दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े और धन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, पहले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैल लेकर के, हल लेकर के, रास्ते में 4-5 भगत भूखे बैठे थे। तब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे, भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता थी। बारिश हो गया तो फसल होगी ना, तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे द्वार रख दी उसके, उनके आगे बीज, वो मरे थे भूखे, सारी खा गई। अब वो चल पड़े, भगत जी ने सोचा ही घरवाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया, किसान का तो जीवन होता बीज। लेकिन उसने परिवार नौछावर कर दिया, कक्कर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया, खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों के दजवार गजब की उगरी और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, और मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे, ऊपर नीचे पुड़े नो भरी दिखे उनका खेत बड़ा दिखे। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और द्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई, तो वो तो बाद की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने द्वार नहीं बोई, वह बोली बोई, भोका है हमारा भगत कि ना, आपके तो मतीरे उग रहे हैं, द्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, द्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा। जाते ही उसने मतीरा शर्मा मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसे बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी का टेढ़ा पड़ा, शर्म चाया, और वह देवी देख रही थी कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत ने बोला, वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछा कर मतीरे फोड़न लग गई, ढेर लग गया, गठड़ी बांध के चल चली, ढोन लग गई ज्वार, अरोरा की ज्वार कभी कंडम सी होगी वो ये को ना। खड़ी तो रही पर उसमें बीज नहीं बढ़िया, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह पांच छह गठड़ी ले आई भर भर कह। भगत बोला जितनी अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना लेना। भगतमती ने बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भरकर चाली। जब उसका पोटा पूरा हो लिया वहां तक तो बहुत मरती आई, बार खूब लग गया, उतारी तो सारा फूस बना पाया। एक फेर लाई वो विनय हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में तुम्बों से द्वार निकला, गांव कट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी तो सारे, भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया और फिर भी उबर दी रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चार युगों को देख लो हमने किसका रखा मार। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग में, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करने की। इस मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट करेगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, पर उसके कारण बढ़ा था। तो किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात हो रहा कैसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। हम भी मानते थे कि चल ना होगा पर भगवान तो है और बहुत काम कर रखे हैं, और मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाएगी परमात्मा जो चाहे वो कर सके। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी में। आपको बताता हूं, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस, 1988 में नाम लिया, 1989 की बात है। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा, उसके ऊपर एक गैलरी ही पे पूजा स्थल बनाया 5.5x15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जंगले पूजा स्थल, 2 माज का उनको पेंट पेंट करके लगा दिया, उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक सर्प खिड़की का, वो डबल होते, मैं ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपुआ कर रखी, कि गुरु जी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा फूटा हुआ था उसमें के चूहे बढ़कर उनको काटने लगे, और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली ले आया था, ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती है बाहर की साइड, और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दे आया, भाई ये काट के तैयार कर दे, इनका बिल बना दे। मैं और सामान लेकर वापस आया, उसने बांध के लपेट कर रख रखी थी, मैं उठाकर चला आया पैसे देकर। आके मैंने कहा ले भाई लगाओ, तो ये बड़ा लड़का, अरे को वहां किराएदार रहता था, वो बोले हम लगा देंगे, कील क्याल सारी ला रखी थी, उन्हें सीढ़ी लगाई। मैं तो चला गया उनको कह के, शाम में आ तो कोई नहीं लगा रखी, पूछा विकार में क्या था क्यों नहीं लगाई, उन्होंने बताई कि छोटी है बराबर में, छोटी रहेगी कम से कम 9 इंच छोटी है। वो लिखा था मैंने 3 फुट 9 इंच, उसने 3 फुट काट दी, या नौकर ने देख कर किया, गलती लगी जैसी हुई। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। मैंने वो ठा के स्टोर में डलवा दी, एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया, फिर वो नित्यनेम छपवाई पुस्तक, फिर उस मगर चूहे बढ़ने लगे, कपड़ा बांधा कपड़ा काट दिया, ये मन में था कि वो जाली तक पूरी है नहीं। फिर दिमाग में आई भाई ऐसे करो, इस एक खिड़की में दिक्कत है, इस जाली को ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो, तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था 14-15 साल का, तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, वही लगा दियो, इनने शाम सी न लाई किता। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे, मेरे तो वही बात खटक रही थी, इन्हें लगा दी होगी बच्चा ठीक से ना, मैं आप लगाऊंगा साथ लगकर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी उसी पर जो शीशा टूटा हुआ था ग्लास, वो ग्लास लगवाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी कौशली साइड में, 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही जुगाड़ करना चाहता था, मैं कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो मैंने अनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने, फिर ईब ला के गए, सवेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था यो लापरवाह, ईब ने देखा गाने वाला पापा ने फटाफट बुला कर ईब को लगवा दी। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या, ये बोला नहीं और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में, मैंने ये सुबह आपके दाते इनको कह दी कि भाई ये रखी लाओ जब ला दियो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बता ये बदलवा तो नहीं डे इसको, और बोली बदलवाओ कि थे तो लाई मुश्किल तो है, बदलवाने का कित है हो। मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा कि एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी हो करके भी 6-7 इंच लटक रही बराबर मुड़ के, 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड, दूसरी देखी दूसरी भी गई। फिर इसने डायमंड ढूंढ गए, बड़े लड़के ने खेल रहा था कि, तो मैं बोला तू ये बता ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है, वही है मेरी मां ने उतार के याद रखी थी हमने ला दी, मैं मेरी कसम खा कबीर साहिब की, कबीर साहिब की कसम खा ली। बच्चों वो दिन है आज, इतना गजब का विश्वास कर दिया था, तो बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन वो दिखा दिया कपड़ा छोड़ा हम लो बढ़ा जा, इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की जाली बना दी, वो आज भी विद्यमान है। एक तो उन्होंने से वो मकान बेच दिया था इसने वीरेंद्र ने मेरे यहां इस मार्ग पाने के बाद। जिसने लिया वो भगत, उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस देंगे। आज वो फिर वही है, वह जाली लगी हुई है। हमने भी उसको सफाई अभी किया नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत सी होगी, यहाँ से निपटेंगे इस मिशन को पूरा करके उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों विश्वास रखो इस मालिक पर, कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास, और गलत साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं, गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कांकर वोई जान के, धना भगत के खेत वहां कांकर से अन्न हुआ, कंकर से वहां कांकर से अन्न हुआ, वहां केसो से हुआ कबीर, वार पार पावे नहीं गति कुछ गहर गंभीर। अब नकली गुरुओं के कारण ये सारा अध्यात्म ज्ञान नष्ट होया पड़ा था, उसके बारे में गरीबदास जी बताते हैं। गरीब विष्णु त्रिलोक की नाथ के परचे कोटि अनंत, भगत वत्सल भगवान है क्यों निंदत है संत। यानी भगवान में आस्था बनाए रहने के लिए परमात्मा ने इन पर विष्णु जी को निमित्त बनाकर लीलाएं की, कहते इनको विशेष वो ना समझो, ये भी अच्छी आत्मा है, तीन लोक के नाथ है। अब जैसे कोई मंत्री है उसकी भी पावर होती है, उसको ये कहना तो कुछ नहीं है प्रधानमंत्री सब कुछ है, ये तो लड़ाई वाली बातें हैं। ये तो सती थी बताई है, इनकी इतनी औकात है, इतनी ताकत है, उनकी इतनी है, इनसे हम दूर नहीं हो सकते और इनको एज इष्ट पूज भी नहीं सकते कि ये करतार बने हुए हैं अपने आप, ये वो करतार नहीं जो होना चाहिए। गरीब करता ऊपर चोट है कहते हैं करतार, मूल लह नहीं मूर्खा गिनते हैं क्यों डारे। ओए ओए। के जितने करतार अपने आप बना रखे तुमने, राम कृष्ण विष्णु ये प्रण कितने बना रखे। करता ऊपर चोट है, जो एक करतार को छोड़कर अन्य जो करता बनते हैं उनकी दुर्गति होती है। रामचंद्र देख लो, सारी उम्र दुखी रहा और करता बन रहा था, लोग भगवान के थे भी मान लेता था, आजीवन कष्ट रहा, अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मरा। कृष्ण जी सारी उम्र दुखी रहा, सुख का सांस कभी नहीं, कभी कंस कभी केसी कभी चाणूर कभी कुछ पूतना, और आखिर में दुर्वासा के श्राप से कुल उनके सामने नष्ट हो गया। जिसका कुल सामने मर है और पाछे ती वो जीव है, सबसे देर भाग आदमी हो, सब कष्टों को देख कर रो रो के टाइम काटा, आखिर वह एक विषाक्त तीर से मारेगा, विषाक्त जहर से बुझे हुए एरो तीर से मारेगा। अब क्या बताते हैं, गरीब करता ऊपर चोट है कहते हैं करता रे, मूल लह नहीं मूर्खा गिनते हैं क्यों डारे। के मूल की पूजा क्यों नहीं करते, डालियों में क्यों गिनते फिर हो तुम, कितने भगवान है कितने टहनी है, मूल से सब कुछ होता। गरीब सतगुर साहिब एक है दूजा ब्रह्म विरोध, बिन सतगुर सूझे नहीं चाहे पढ़ो अठारह बोध। गरीब गल गोटा गुरुआ घने फंसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बनाए कर चमपुर दे धकाए। कि ये इंसान का नाश करने, मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वाले ये बाह्य दिखावा करके द्वादश 12 तिलक बना लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, लाल कपड़े बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ बचालेंगे या घोटन घोट हो जाएंगे, मुंड बना लेंगे। ये गलगोटा है, ये काल की फांसी लिए फिर रहे झूठी साधना करवा के। कहते द्वादश तिलक बनाए कर लोग इन पर कुर्बान हो जा साधु है, और जमपुर दे धक्का, यानी उस नरक में धक्के ते ठोक दे, या साधना गलत आप पे जागा करो। गिरिब झूठे गुरु का नाक ले, फिर सरवण और नैन, सतगुरु बोले साखिये दूर कर फोकट भैन। कहते नकली गुरुओं का इनका झूठे मारे नाक कटे, यानी कहने का भाव है कि इनका बच जा दूर हो जा, फूक दे। फूकना मतलब ये नहीं आग लगा दे या उन्हें मार दे, उन्हों का आग्रह कैसे, या कहावत हमारे यहाँ कि इसने फूक दे एक तरफ, जैसे कोई सामान मंगाया इसकी जरूरत नहीं, कौन ठाला है ना फूक एक तरफ, यानी पटक दे दूर। एक गरीबदास जी कहते झूठे गुरु के नाक कान काट दे, इसका अर्थ है कि उनको कति वहां से अपने से दूर कर ले। गरीब झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूक, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक। गरीबदास जी बताते हैं झूठे गुरु को झटक दे, और जो नकली शिष्य उन पे चिपके बैठे उन्हें भी फूक। फूकने का मतलब ये नहीं उन्हें मार दे कि एक तरफ पड़े रहने दो। गरीब पीछे गई सो जाने दे, ले रहती को राख, उतरी लाभ चढ़ाइयो करो अपूठी चाख। गरीबदास जी कहते पीछे जो होई सो होई उसने भूल जाओ, अब शेष बचे जीवन में संभाल लो, उतरी लाभ चढ़ाइयो करो अपूठी चाख। जैसे हम सत भक्ति ना करने से हमारे सारे काम बहुत खिंच के होते हैं, होते ही नहीं, परेशानी रहती है, पर जब सच्चा गुरु मिल जाता है वही काम फटाफट होने लग जाते हैं। पुराने समय में कुएं से जल निकाला करते थे, सिंचाई का काम भी कुओं से होता था, उसमें बैल जोड़े जाते थे, एक लाव होती थी, लाव वो डोल नीचे जाता था, एक लकड़ी की पुली होती थी, लोहे का इतना सिस्टम नहीं था, फिर लोहे की बनने लगी थी पुली, उसके ऊपर वो लाव यानी रस्सी, मोटी रस्सी होती थी बढ़िया मजबूत, वो पुली से नीचे उतर जाती तो अब पुली घूमती नहीं, वो फिर कीशी होती थी, वो घूमती नहीं और अड़का खड़ा हो जाता नीचे, रस्सा गिर जाता साथ में, फिर उसको कहते हो फिर से पुली पर रख और फिर खींच, आसानी से घूमेगी और फटाफट पानी निकला होगा। कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्ति से दूर होकर भगवान से तुम दुख पा रहे हो, फिर से भक्ति शुरू कर दो फिर आपको सुख होगा। गिरिब पीछे गई सो जानते, ले रहे देखो रख, जो शेष बचा जीवन इसको संभाल ले रख, उतरी लाभ चढ़ाइयो करो अपूटी चाखे। गरीब मोए बिन पावे नहीं जीवित कैसा योग, 84 आसन करे मिटे न संसार शोक। के जीवित मरे बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, तुम जैसे बकवादों लग रहे हो जीवित कैसा योग, ऐसे भक्ति नहीं पड़ेगी। और जो 84 आसन कर करके लोग दिखावा करते हैं इसे मोक्ष नहीं है। गरीब पंच अग्नि पाखंडे है मोनी तपे आकाश, झरने बैठे क्या हुआ क्या जी में पंच ग्रास। ये पांच दूने लगा के बीच में बैठ जाते हैं ये पाखंड करने के लिए, इन मकला इतनी है ज्ञान इनको, कोई मौन रखता है कोई तप करता है, मटके गड्ढे के अंदर सुराख करा के एक टपाई कर रख के 40 दिन सर्दी के महीने में 100 मटके डेली पानी के अपने सिर पर डलवाता है, और बड़े बड़े गांव के लोग उस पाखंडी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो कोई कहे मैं सिर्फ 5 ग्रास खाया तू ज्यादा खाता नहीं, इस तरह के ड्रामाबाजी से अट्रैक्ट करते पब्लिक, और पल्ला कुछ नहीं। ਗਰੀਬ ਦੂਦਾ ਧਾਰੀ ਸ਼ਦ ਹੈ ਪਾਨ ਫੂਲ ਫਲਖਾਈ ਗਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਸਨ ਸੇ ਰਹੀਏ ਬੰਦੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਈ। ਕਈ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਦੂਧ ਦੂਧ ਪੀਓ ਹੈ, ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੇ, ਔਰ ਕੇਵਲ ਕਭੀ ਫਲ ਖਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੂਲ ਫਲ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਕਹਤੇ ਗਰੀਬ ਦੂਧ ਦਾ ਧਾਰੀ ਸ਼ਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਨ ਫੂਲ ਫਲ ਖਾਈ ਗਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਾ ਸੰਚੇ ਰਹਿ ਬੰਦੇ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨੀ ਸਿੱਧੇ ਨਰਕ ਨ ਜਾਗੇ। ਗਰੀਬ ਚੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਭਦਰਾ ਮੋਨੀ ਮੈਲ ਨ ਪਾਵੇ ਦੋਮਰ ਪਾਨ ਠੱਡੇ ਸਰੀ ਇਹ ਦੋਜਕ ਧੱਕੇ ਖਾ। ਗਰੀਬ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਯੋ ਰੋਗ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਨਿਜ ਨਾਮ ਨ ਚੀਨ ਘਰ ਘਰ ਦੁਆਰੇ ਭਟਕਤੇ ਵੇਖ ਬਿਨਾ ਯਕੀਨ। ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜਬ ਲਗ ਨਹੀਂ ਵਿਵੇਕ ਤੀਨ ਕਾਲ ਨਿਪਜੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੈ ਕਰਮ ਰੇਖ। ਕੇ ਚੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਜੈਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਪਤ ਜਟਾ ਰੱਖ ਰੱਖੀਏ ਦਾੜੀ ਬਡਵਾਰੀ ਮਾਲਾ ਮੋਲਾ ਪਹਿਨ ਗਏ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਡਰਾਮਾ ਫੁਲਕ ਰੱਖਿਆ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਕਤੀ ਗੋਟ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਵਾ ਰੱਖਿਆ ਕਹਤੇ ਇਨਸੇ ਕੁਛ ਨੀ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਮੌਨ ਰੱਖਤੇ। ਗਰੀਬ ਚੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਭਦਰਾ ਮੋਨੀ ਮਿਲ ਨ ਪਾਵੇ ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਛੱਡੇ ਸਰੀ ਇਹ ਦੋਜਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂ। ਇਹ ਧੂਮਰ ਪਾਨ ਕਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰੇ ਸੁਲਫੇ ਕੀ ਮਾਰੇ ਚਲਮ ਬਰਕੇ ਡੂੰਡਾ ਠਾ ਦੇ ਠੱਡੇ ਸਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਪ ਕਰਤੇ ਕਹਤੇ ਦੋਜਕ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਉਂਗੇ ਨਰਕ ਮਵਾਏਗੀ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਪਕੋ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਜ਼ਾ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸਕੋ ਹਲਕੇ ਮਨਾ ਲਿਓ ਬੱਚੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਧੰਦੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪੱਟਿਆ, ਇਸਕੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਦੇਖਣਾ ਨਾਰੇ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਗਾ ਦਾਤਾ, ਮਾਲਕ ਆਪਕੋ ਮੋਕਸ ਦੇ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਆਪਕੋ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।